प्रवचन सार प्रवचन सुधा भाग पांचवा लेक्चर नंबर 367 ओम नमः सिद्धेश्वर
ओम नमः सिद्धेश्वर
ओम नमः सिद्धेश्वर
ॐ शुद्धात्मने नमः
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् सुर असुर नरपति वंदने प्रविनष्ट घाती कर्मने प्रणमन करू धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वड़ी शेष तीर्थंकर अने सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्य चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदु वळी हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने नमस्करण करिये रीते गणधर अने अध्यापको ने सर्वसाधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्यनी जेनाति शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्युक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 87 पर हम आगे 87 पृष्ठ पर नया जो पैराग्राफ है यहाँ से हम पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ उत्पाद व्यय और ध्रुव की बात यहाँ चल रही थी कि जो सत्ता गुण है तो उत्पाद व्यय और द्रव्य ये उसके सत्ता गुण का जो तीन पद्धति से हमने देखा था उसके वो पर्याय है, उसके परिणाम है। और सत्ता गुण और द्रव्य अभिन्न है इसलिए कहते हैं द्रव्य के ये तीन परिणाम, ये बात यहाँ सिद्ध करते आए हैं। अब हम 87 पृष्ठ के नए पैराग्राफ वहाँ से पढ़ेंगे। एक द्रव्य ने बीजा द्रव्यनो संयोग थता, बीजी अवस्था देखा है, इसका अर्थ क्या है? किसी द्रव्य में उसकी पर्याय पलटी, बीजी अवस्था देखा है ने पर्याय पलटी, अवस्था पलट गई और उस समय किसी अन्य द्रव्य की उपस्थिति है, उसका संयोग है, तो क्या लगता है? अरे ये द्रव्य यहाँ आया ना उसने ये कार्य किया, ऐसा लगता है। हाँ, ये बीजा द्रव्य नो संयोग, उसका अर्थ होता है निमित्त। बीजी अवस्था देखा है एथी कहे छे के, हाँ हाँ, ये बीजी अवस्था ने नैमित्तिक कार्य हुआ, इस द्रव्य में कार्य हुआ, उस समय वहाँ अन्य द्रव्य की उपस्थिति देखने में आती है, तो तने एम थी जाए के, उसका अर्थ क्या, तुझे ऐसा लगता है नहीं ऐसा, तुझे लगता है आ संयोग की अवस्था बदली छे, मुझे जो भासित हो रहा है कि ये संयोग के कारण अवस्था बदली, તો કીધું એસા હૈ નહીં, એમ નથી, એમ કેવું છે? સમજમાં આવતી ને બાકી? હા, ક્યોંકિ યહાં કાર્ય હોતા હર સમય વો અવસ્થા 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 પરિણમન હો રહા હૈ, ઉત્પાદ વે ઉત્પાદ વે ઉત્પાદ વે, તો યહાં અવસ્થા બદલી, વહાં કિસી અન્ય દ્રવ્ય કા વહાં સંયોગ દેખને મેં આતા હૈ, ક્યોંકિ નિમિત્ત તો હોતા હી હૈ. તો ક્યાં લગતા હૈ જો કરે યે નિમિત્ત કે કારણ કાર્ય હુઆ? તો કીધે એસા હૈ નહીં, ઘણું સમાયું, ક્યોંકિ ઉત્પાદ વ્યય ઓર દ્રવ્ય તીનો હિ દ્રવ્ય કે પરિણામ હૈ, વો દ્રવ્ય સે હોતે હૈ, પરદ્રવ્ય સે બિલકુલ નહીં હોતે, ક્યોંકિ ઉસકે દ્રવ્ય મેં ઉસકે અપને ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવ ચલ રહે, હરેક દ્રવ્ય કા અપના અપના, તો હરેક કા અપને અપને મેં હોગા તભી તો અનંત દ્રવ્યો કી અનંતતા કાયમ રહેગી. કિસી ઘણું સમાયું ઇસમે ઇતના સારા માલ ભર દિયા હૈ, સમા દિયા. તે તેનામાં તું તારામાં, પ્રત્યેક દ્રવ્ય અપને અપને મેં હૈ, તો સંયોગ વાલે દ્રવ્ય ઉસકે અપને મેં હૈ, ઓર તું તેરે મેં હૈ. સંયોગથી તું જોવા માંડ કે આ અગ્નિ આવી માટે પાણી ઊનું થયું, ઉચિત નિમિત્તે આવ્યું માટે પાણી ઊનું થયું એમ નથી, કે નિમિત્ત કે કારણ હુઆ એ બાત હિ નહીં હૈ. કહે પાણી કી હિ ઉસ સમય ઉસ રૂપ પરિણમને કી યોગ્યતા ઉસકે અપને સે અપને મેં હુઈ હૈ, યે નક્કી કરના.
યાને કિસી કો પ્રવચન કે બાદ ઘર મેં જાને કો લેટ હો ગયા બારિશ કે વજહ સે, તો વો માને કે ભાઈ બારિશ આઈ ઇસલિયે મેં અટક ગયા, એસા નહીં હૈ ના? વો
અભી હરેક દ્રવ્ય કે હરેક પર્યાય મેં લગા લેના હૈ.
ઉસ જીવ કો વૈસા હી અટકના થા, વો નિમિત્ત બારિશ બની,
હા, ઉસકા વહાં રુકના થા. પાણી અપને મેં હી ગરમ હોતા હૈ, તો કિસસે ગરમ હોતા હૈ?
અગ્નિ લગાઈ તભી ગરમ હોતા,
તો બીચ મેં બર્તન મત રખો, અગ્નિ પર ડાયરેક્ટ પાણી રખો, હા, તો અગ્નિ ને પાણી કહા ગરમ
કિયા? પતેલે ને કિયા ના? દેખો ભાઈ સાહેબ, પાણી કા ઓર અગ્નિ કા દોનો કા સ્વચતુષ્ટય ભિન્ન હૈ, તો એક કા દૂસરે મેં અભાવ હૈ, તો ઉસકો ગરમ કરે બાત કૈસી આઈ?
અગ્નિ સે સબ ગરમ હોને ચાહિયે,
ક્યોંકિ હમે અનાદિ સે સંયોગ કી અપેક્ષા સે હી દેખને કી આદત લગી હૈ. યે વસ્તુ સ્વરૂપ જો હૈ વો સમજને કા ઓર પચાને કે લિયે થોડે સા વીર્ય ચાહિયે, તાકત, પુરુષાર્થ.
યાને વહાં નિમિત્ત નામ કી ચીજ હૈ વો અપને મેં હૈ, ઓર પાણી અપને મેં હૈ, દો ભિન્ન દ્રવ્ય હૈ, હરેક કી અવસ્થા અપની અપને મેં હો રહી હૈ, યે તો નક્કી કરના હૈ. યે જો કારણ વિપરીતતા અનાદિ સે બની હુઈ હૈ, કારણ વિપરીતતા સમજતે હૈ? આપને હા હા કિયા ના? કારણ વિપરીતતા કિસકો કહેંગે? કારણ કે બારે મેં વિપરીત માન્યતા, ક્યાં વિપરીત માન્યતા હૈ? કે કાર્ય તો ઉપાદાન સે હોતે હૈ, વહાં નિમિત્ત હોતા હૈ, પરંતુ નિમિત્ત સે કાર્ય હોતા હૈ એસી જો માન્યતા હૈ, યે કારણ વિપરીતતા હૈ, એસા જ્ઞાન ભી ચલ રહા હૈ.
દેખો બાત એસી હૈ, યે જો પાણી હૈ કોણ સા દ્રવ્ય હૈ? પુદગલ દ્રવ્ય. ઉસમે કોણ કોણ સે ગુણ આપકો માલૂમ હૈ? સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ આદિ. સ્પર્શ ગુણ કી પર્યાય કિતની હૈ? કોણ કોણ સી? હલકા, ભારી, રૂખા, ચિકના, કડા, નરમ, ટંડા, ગરમ. તો વો જો ગરમ રૂપ જો અવસ્થા હોગી, વો બાહ્ય કા દ્રવ્ય આકર ઉસકી અવસ્થા પલટે, એસા વસ્તુ સ્વરૂપ હૈ
ક્યા?
અરે દિખતા બહુત હૈ આપકો, ઇન્દ્રધનુષ્ય દિખતા હૈ ના? ઇન્દ્રધનુષ્ય દિખતા હૈ ક્યા? હા,
પાણી પાણી ગરમ હુઆ યે દિખા કે નહીં?
પાણી ગરમ હુઆ દિખા,
તો પાણી સે હુઆ એસા સમજો.
નહીં નહીં, મેં તો કહેતા
હું એસ્બેસ્ટોસ ડાલતે ના તુમ્હારે આયન
મેં. એસા ભી હૈ, કિસી કિસી ચીજ કો ગરમ કરને સે ઠંડા હો જાતા
હૈ, આપ હી બતા રહે હો.
નહીં, યે યે ઉદાહરણ થોડા.
નહીં નહીં, હમ તો કહેતે ઇન્દ્રધનુષ્ય આપકો દિખતા હૈ કે નહીં? કિતને જન ચડ કે આયે ઉધર? હા, અરે વો રેલ કી પટરી હૈ વો બિલકુલ પેરેલલ દિખતી હૈ, જૈસે આગે 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 દેખા તો ક્યા દિખતી હૈ? નેરો નેરો હોતી દિખતી.
યે દ્રષ્ટિ ભ્રમ હૈ,
વો તો દિખતા હૈ એસા હોતા નહીં, ઇસલિયે તો જગ ફસતા હૈ.
रीजन आ गया कोई भी चीजों को गर्म करने से ठंडी हो जाए,
देखो मूल में निमित्त नहीं है वो बात नहीं, निमित्त है और हमें तो संयोग की तरफ देखने की आदत है कि निज शक्ति जो है प्रत्येक द्रव्य की निज शक्ति वो तो दिखती तो है ही नहीं है। हाँ कार्य दिखाई देता है और कार्य के समय परिचीज भी दिखाई दी तो क्या लगता है उसी से हुआ।
और अगर पानी गर्म होता है ऐसा माना ना कि पानी अपनी योग्यता से पर्याय दिया
सब, अरे हर हर पर्याय अपने योग्यता से स्व समय पर होता है तो उसका निमित्त नाम का जो पांच समय भी वहाँ नक्की है कि नहीं, तो उस समय वो अग्नि के लिए निमित्त सूर्य का उष्णता है कि वो अग्नि की गर्म, वो तो बिजली से गर्म हुआ कि वो तो गैस है कि आपने वो चूल्हे की अग्नि जलाई, वो भी निश्चित होगा परंतु उससे हुआ ये बात नहीं है। पहले मैं पहले नक्की करना वो झरने में कुछ भी में से भी निकलते अंदर से यहाँ क्या कहते हैं देखो यानी निमित्त नहीं है उसकी बात नहीं, होता है और वो संयोग दिखाई भी देता है और हमें लगता है कि इसके कारण हुआ।
जब जब कार्य होता है
अग्नि के बिना अभी रोटी बनाओ, बिना अभी गैस चला जाता है बनाओ, ऐसा कहेंगे ना निमित्त से मानने वाले तो हाँ तो उसमें उस आटे की रोटी रूप परिणमने की योग्यता उस समय नहीं है।
देखो हमने पांच समय जो सीखे हैं वो पांच समय में निमित्त होता ही है, पांच समय में से एक निमित्त है लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता ये पहले नक्की करो।
वो बैठ जाए तो बिल्कुल पूरा सब 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 गुत्थी छोड़ जाएगी। अभी ऐसे ना ट्रेन में आप रोज आते हैं प्लेटफॉर्म पर खड़ी है गाड़ी और दूसरी गाड़ी पीछे जाती है तो क्या लगता है उसके तरफ देख, अरे हम आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर प्लेटफॉर्म की ओर, अरे हम तो खड़े हैं। कितने बार ऐसे हो जाता है बाहर जाते हैं बाहर गांव जाते हैं तो दिखाई देता है ऐसा तो ये तो भ्रम है ना, हम तो स्थिर है फिर भी दूसरी गाड़ी विरुद्ध दिशा में जा रही है तो हमको लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो वो दूर वाले झाड़ पीछे जाते हैं, वो तो नजदीक वाले ऐसे जाते हैं और दूर वाले अपने साथ चल रहे ऐसा दिखता है। हाँ ऐसा लगता है ना अपने साथ चल रहा है, ये लगना बात अलग है। यहाँ क्या कहते हैं देखो, संयोग थी तू जोवा मांड के यानी तू देखना चालू कर, क्या संयोग से अगर तू देखेगा आ अग्नि आवी माटे पानी उनु थयूं उचित निमित्त आयु माटे पानी उनु थयूं तो कहते एम नथी। तो अगर ऐसा मानता है तो कहते क्योंकि तू संयोग की तरफ से देख रहे, तू वस्तु की तरफ से सोच ही नहीं रहा है, वस्तु के अंदर जो अनंत सामर्थ्य पड़ा है क्योंकि परिणमने का जो बल कहाँ से आया, पर चीज थोड़ी उसमें कुछ जबरदस्ती उससे उसने उसमें कुछ कर दिया, वो तो उसके अंदर एंटर भी नहीं हुई है। तो ये वस्तु के अंदर ही अपनी शक्तियां है कि वो परिणमन करने की योग्यता उसमें ही पड़ी है और कौन सा परिणमन किस समय वो सब कुछ निश्चित वस्तु के अंदर है, ये पहले में पहले नक्की करना है। ये बाह्य उदाहरण देते हैं क्योंकि हमारे रोजमर्रा जिंदगी में ये हमको देखने में आते हैं तो कहते उससे तो हमें अपने आत्मा पर घटित करना है। क्यों? क्योंकि हम अभी तक कहाँ निगाहें लगा के बैठे निमित्त की ओर, कोई ज्ञानी हमको मिलेगा तब हमको समय दर्शन हो जाएगा, कोई तीर्थंकर के पास हम जाके जन्म लेंगे तो हमको हो जाएगा कल्याण, ये तो कहते आनंद तो बार तू जाके आया है। परसों के प्रवचन में आया था ना आपके सेकंड प्रवचन में आया था अनंत बार तीर्थंकर के समोचरण में जाके आओ। यहाँ क्या कहते हैं देखो, ए अग्निमा सत्ता नाम नो गुण छे, सत्ता का अर्थ क्या है अस्तित्व, अने उष्ण नाम नो गुण छे, ये उष्ण नाम का कौन सा गुण है? हाँ उष्ण नाम का गुण कौन सा, अग्नि का उष्ण नाम का उस स्पर्श गुण की पर्याय, यहाँ तो उसको गुण कह दिया है समझाने के लिए। ए पण उत्पाद व्यय ने ध्रुव वाळो छे, तो ए ठंडी अवस्था माथी ऊनी अवस्था थई એ એના ઉત્પાદને લઈને થઈ છે, વો સ્પર્શ નામ કા ગુણ હૈ, જૈસે સત્તા નામ કા ગુણ હૈ, પુદગલ હૈ ને વો, વૈસે સ્પર્શ નામ કા ગુણ હૈ, ઉસકા ઉત્પા સોરી ઉષ્ણતા, સ્પર્શ ગુણ હૈ, ઉસકે આઠ પર્યાય હોતે હૈ, અભી ગિના હી ના વો, વો સારી સ્પર્શ ગુણ કે પર્યાય, તો હમકો ઉષ્ણ સ્પર્શ કહેંગે. તો એ અવસ્થા જો હુઈ, પહેલે ઠંડી અવસ્થા થી પાણી કી, ઉસમેં સે ઊની અવસ્થા થઈ, ગરમ હુઆ, એ એના ઉત્પાદને લઈને થઈ છે. એને પાણી કા ધ્રુવપણા કાયમ હૈ, પહેલે ઠંડી અવસ્થા કા વ્યય હુઆ ઓર ઉષ્ણ અવસ્થા કા ઉત્પાદ હુઆ, વો એક હી સમય મેં તીન પરિણામ હૈ, ઓર વો પરિણામ લેકે ઉસકી સત્તા હૈ, ઓર સત્તા દ્રવ્ય સે અભિન્ન હૈ, એ કહે રહે. એ ઉચિત નિમિત્ત છે માટે થઈ છે એમ નથી, કારણ કે ઉચિત નિમિત્ત છે એ પણ સત્તાવાળું તત્વ છે. એ જો અગ્નિ જો ઉચિત નિમિત્ત હૈ પાણી કે ગરમ હોને મેં, તો ઉસકી અપની સત્તા હૈ કે નહીં હૈ, તો ઉસકી અપની સત્તા હૈ, અને એમાં પણ એની સત્તા એના ઉત્પાદ વેધરૂપણે થાય છે. તો અગ્નિ મેં ક્યાં ઉત્પાદ હુઆ? પાણી મેં તો ઠંડી સે ગરમ હુઆ, અગ્નિ મેં ક્યાં હુઆ? ગરમ સે ઠંડા હુઆ ક્યાં? અરે ટેમ્પરેચર વેરિએશન હોના ચાહીએ, જરૂરી નહીં હૈ ઉતના કા ઉતના ટેમ્પરેચર રહા, પણ વો હર સમય ઉતના રહા ઉતના રહા ઉતના રહા, વો ભી ઉત્પાદ વ્યય હૈ ના, એ બદલના કા અર્થ કુછ કમ જ્યાદા હોના યે જરૂરી નહીં હૈ. હમકો બદલના કા અવસ્થા બદલના કા અર્થ, હા વો પુદગલ કી સત્તા થોડી ચલી ગઈ. યહાં અગ્નિ કો ઉદાહરણ કે રૂપ મેં કહા હૈ, દ્રવ્ય અગ્નિ નામ કા કોઈ દ્રવ્ય નહીં હૈ, સમજાને કે લિયે યહાં લિયા હૈ.
સત્તા ચલી ગઈ કે ઉસકી પર્યાય બદલ ગઈ,
કિસકી?
અગ્નિ કી. અભી ચાલુ ફ્લેમ ચાલુ
હૈ, હા ફ્લેમ ચાલુ થી
બંધ કર દિયા,
હા
તો અગ્નિ અગ્નિ રૂપ થી, લેકિન અભી ઉસકી પર્યાય મેં બંધ બના,
પુદગલ પુદગલ રૂપ થા,
હા
અગ્નિ અગ્નિ રૂપ નહીં, પુદગલ પુદગલ રૂપ થા. અભી ઉસકે સ્પર્શ ગુણ કી ગંધ રસ સબ બદલ ગઈ, પુદગલ તો કાયમ રહી. માન લેતે કે જૈસે જલતી હુઈ અગ્નિ કોઈ કોયલા હૈ કુછ, હમને ઉસ પર પાણી વાફ હો ગયા યા ઉસકે તો ધુઆં હો ગયા, ઇસ તરહ સે અગ્નિ નામ કા દ્રવ્ય નહીં હૈ, ઇસલિયે વો ભી પર્યાય હૈ, વો પર્યાય નષ્ટ હો ગયે.
આપકો એક રિક્વેસ્ટ હૈ, હાલ ઉજ્જવલા,
વો પુદગલ કા સ્કંદ હૈ.
જો કોઈ પ્રશ્ન પૂછેગા આપકો રિપીટ કરના નહીં તો સુનને વાલે કો કુછ નહીં સમજતા હૈ, આપ તો ફટ સે ઉત્તર દે દેતી હૈ, લેકિન કિસકા ઉત્તર?
વો આદત હો ગઈ હૈ મેરે કી. દેખો દેખો, આપકા યે પ્રશ્ન હૈ કે અગ્નિ નામ કા સ્કંદ હૈ ક્યા? હૈ, વો સ્કંદ હી હૈ. વહાં હમ અગર કહેંગે અગ્નિ કા એક જીવ હૈ, વો ઉસકા શરીર હૈ, વો શરીર કા વો સ્કંદ હૈ. ये स्कंद किसने टाइप के हो जाते हैं शरीर के, जो पृथ्वी के टाइप, अग्नि के टाइप, वायु के टाइप, इस तरह से वो तो स्कंद है. वो तो स्कंद, उसका परिणमन वो परमाणु का अन्य रूप से हो गया. हमें लगता है अग्नि बुझ गई क्योंकि हमने तो गैस ऑन किया ऑफ किया, तो अभी अग्नि नहीं रही. तो अग्नि नहीं रही तो वहाँ अग्नि का एक जीव भी नहीं रहे, वो शरीर का परिणमन अन्य रूप से हो गया. वो आपको दिखाई देना ही चाहिए, जरूरी नहीं है. ये कहते
हमने फ्लेम बुझा दी, इसका अर्थ अग्नि जो थे उपस्थित, जो थे अग्नि,
अग्नि स्कंद, हाँ
वहाँ अग्नि का एक जीवों का वहाँ मृत्यु हो गया. तो ये मुनिराज जो होते हैं उनके उद्देश्य से जब खाना बनता है, इसको उद्देशिक आहार कहते हैं, वो कभी नहीं लेंगे. जो सच्चे भावलिंगी संत होते हैं, वो उनके लिए खाना बनाया है ऐसा उनको पता लगे तो नहीं लेंगे. क्यों? कि ये जो अग्नि बुझता है, अग्नि का एक जीव का मृत्यु होता है, जो कि उसकी अनुमोदना उन्होंने दी.
सारे पांच स्थावर का एक उनके होते
ख्याल में,
अकेले अग्नि.
इसलिए जो मुनियों की जो बताए कि भाई वो उनके उद्देश्य से बनाए हुए वस्ती गृह में भी नहीं रहते, उनके उद्देश्य से बनाए हुए
वसती का जिसको कहते हैं,
तो आपका हाँ। क्या आपकी भाषा में अपासरा, वो बिल्कुल दिगंबर मुनि होंगे और रहेंगे नहीं. गुफा में रहेंगे, कहीं टूटे फूटे घर जहाँ कोई जाता नहीं रहता नहीं, ऐसे जगह पे जाके रहते हैं। और खाना की बात तो अभी आपको बताई, क्योंकि हमने खाना बनाया और हमारे यहाँ कोई पर्टिकुलर मुनि आने वाले हैं तो उनके उद्देश्य से खाना बनाया, पानी गर्म किया, जो भी जो होता है, तो वो नहीं लेंगे। इसके पीछे का कारण ये है। हमारी सुशील एक बहुत अच्छी बात बताती है कि हमारे लिए खोक क्या ढोकड़ा बनाओ, ऐसा कुछ ऑर्डर देते हैं कुछ लोग।
हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कहा, देखो अग्नि के बारे में बात चल रही थी। ए उचित निमित्त छे पन सत्ता वाले तत्व से मिला, हाँ नीचे से चौथी लें, અને તેમાં પણ એની સત્તા એના ઉત્પાદ્વય ધ્રુવપણે થાય છે અને તે સત્તાથી ઉત્પાદ્વય ધ્રુવ જુદા નથી। અગ્નિ મેં જો ઉત્પાદ્વય ધ્રુવ હૈ વો અગ્નિ મેં હો રહે, પાણી કે ઉત્પાદ્વય ધ્રુવ વો પાણી મેં હો રહે, દોનો કે અપને અપને મેં અપને કારણ હો રહે, પર કે કારણ કુછ નહીં હો રહા, દોનો હી અપને અપને મેં પરિણમિત હો રહે, યે કહે। અને તે સત્તા તેના દ્રવ્યથી જુદી નથી। अब यहाँ पानी एक द्रव्य और अग्नि एक द्रव्य ऐसा समझकर समझाने के लिए उसको द्रव्य कहा है, तो दोनों का ही परिणमन अपने अपने में हो रहा है, दोनों की ही सत्ता अपने अपने में है, ये कहे। समझाय छे आ, थोड़ी बात छे पण गंभीर छे, घणो भेद ज्ञान करावी, ये भेद ज्ञान जरूरी है। तो मैं एक सत्ता वाला तत्व हूँ, ये शरीर वो मैं नहीं हूँ, ये तो अनंत परमाणु का पिंड है, तो उसमें से एक एक परमाणु जुदा द्रव्य है, हर एक में अपना अपना उत्पादव्यय हो रहा है और मेरा उत्पादव्यय मेरे में मेरे अपने में अपने से हो रहा है। कर्म है, कर्म नाम की चीज है, वो उसके अपने में, कर्म ने मेरे को कुछ राग द्वेष कराए ऐसी बात नहीं, ये मेरा जो परिणमन है वो मेरे में मेरे से मेरे अपने में हो रहा है, भले वो विकारी पर्याय हो, स्वभाव पर्याय हो, कुछ भी हो, ये नक्की करना है पहले में पहले। इसलिए कहते घणो भेद ज्ञान करावी, और ये भेद ज्ञान करना ही हमारा प्रयोजन है, केवल ये इन्फॉर्मेशन ऐसा हमको नहीं देना, हर एक चीज जो सिद्धांत हम सीखते हैं अपने पर कैसे घटित करना है, वो मेरे लिए कैसे कार्यकारी है, ये बात गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह समझाई। वेचनी करी नाखी, वेचनी यानी बिल्कुल हर एक को जुदा जुदा ऐसा कर दिया,
विभाजन
भेद ज्ञान, गमे तेवा संयोगों में एकदम बीजी पर्याय देखाए, जेम पानी ने ठंडी अवस्था हती अने एकदम उष्ण देखाए, एथी तने एम लागे के तने लागे के है न अग्नि नो संयोग छे माटे उष्ण थई के ते एम नथी, ए तो अग्नि नो सत्ता नाम नो गुण छे अथवा उष्णता नाम नो गुण छे, એ પોતે જ ઉત્પાદવ્યયપણે પરિણમીને ઉષ્ણ થયો છે અને પાણી પોતે ઉષ્ણ અવસ્થાપણે પરિણમ્યું છે, અગ્નિને લઈને નહીં। આહા, ગાથામાં બહુ સમાયું છે, એને ઇસમે બહોત કુછ માલ ભર દિયા હૈ, બહોત સમા દિયા હૈ, સમાયા હુઆ હૈ। શરીરમાં રોગ આવ્યો એ એનો સત્તા નામનો ગુણ છે, કિસમે હૈ વો, મેરે મેં, શરીરમાં, શરીર કી બાત ચાલ રહી હૈ, અવસ્થા શરીર કી હમ કન્સિડર કરે, તો સત્તા નામનો ગુણ છે, એથી એમાં ઉત્પાદવ્યય ધ્રુવ છે માટે રોગ થયો। હવે એ ઉત્પાદ બીજા કોઈ કારણે થયો છે એમ નથી, હમ તો પહેલે મેં પહેલે ક્યાં ખાયા થા ક્યાં પિયા થા ઉસકી ચર્ચા, એ નિમિત્ત કી ચર્ચા હોતી હૈ નહીં, એસી બાત નહીં, આઈસક્રીમ ખાયા થા ક્યાં હુઆ થા, બરસાત મેં ભીગ ગયે થે, सर्दी क्यों हुई, बुखार क्यों हुआ, ये इसकी चर्चा होती है। पहले में पहले वो शरीर की अवस्था, शरीर में शरीर के कारण,
और कैसे है निमित्त से हो रहा है सब
हो रहा नहीं, अब
हुआ, हाँ, हुआ निमित्त से हुआ करके चल रहे, और उसका सॉल्यूशन भी निमित्त से ही हो रहा है, तो
वो दिख रहा है, ऐसा ही दिख
रहा है, और दवाई भी खाई,
दवाई भी खाई पर वो ठीक हुआ ही ऐसा नहीं, ठीक हो भी सकता है नहीं भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो शरीर की अवस्था शरीर में शरीर के कारण होती है, नहीं तो कोई मरता ही नहीं ना, दूसरा निमित्त आया हमने बचा दिया उसको,
तो फिर निमित्त से बीमारी हो या नहीं हो, सबको मच्छर काटने सबको मलेरिया नहीं होता,
आप ही बता रहे हैं ना सर।
आपको सपोर्ट
अच्छा है ये नक्की तो यही करना है। जैसे किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों को सिखाया, उसका पहला नंबर आया, सबका क्यों नहीं आया? तीर्थंकर की वाणी सुन के सम्यक दर्शन हुआ तो असंख्या जीव वहाँ पर है, तो सबको क्यों नहीं हुआ? और ये जो तो अनंत बार जाके आए, क्यों नहीं हुआ उसको? ऐसा है ना, यानी होता है तो निमित्त पर आरोप आता है कि इसके कारण हुआ, क्योंकि वो निमित्त नाम की चीज है वहाँ पर। पर निमित्त कब कहेंगे? कार्य हुआ तो। केवल तीर्थंकर है, उपदेश दे रहे और हमने वहाँ जाके समोसरण में अटेंड किया, यहाँ कार्य नहीं हुआ तो उनको निमित्त भी नहीं कहेंगे। कार्य होगा तो निमित्त कहेंगे। हाँ, कार्य हुआ तो की बात है। कार्य दूसरा कुछ चल रहा है, कौन सा चल रहा है? वो तीर्थंकर की महिमा आ रही है, वो शुभभा हो रहे है, तो शुभभा हो रहे है और फिर मिथ्यात्व तो चल रहा है, तो उसके लिए तीर्थंकर को निमित्त कहेंगे क्या हम? तो जैसा उचित निमित्त को देखकर हम कहेंगे उसके कारण हुआ, तो कहेंगे।
जो समाचरण में जाते हुए भी मिथ्यात्वी रहे हैं,
हाँ,
उनमें निमित्त कौन है?
उनमें निमित्त उनका अपना, अभी वहाँ कर्म को भी निमित्त कहेंगे हम।
मिथ्यात्व कर्म,
हाँ, पर कार्य जीव ने किया, अपने में किया, जीव की सत्ता में वो कार्य उसके अपने से हुआ है।
नहीं, मुझे ये पूछना है, हाँ, कि किसी को सम्यक तो होता है समावचरण में, तो जब तो तीर्थंकर को निमित्त बताते हैं, वहाँ उसके कर्मों की बात नहीं करते
है, वो अंतरंग निमित्त कर्म को है और वो बाह्य निमित्त में तीर्थंकर की वाणी को लेंगे, और वो तो देशना का निमित्त है। मुख्य वही तो है, उसी की चर्चा चल रही है। तीसरा नहीं है, मुख्य कारण तो उपादान ही है, तीसरा कारण ये सारे निमित्त ही है बाहर के। निमित्त में कोई नियम रूप निमित्त है और कोई वेरिएबल निमित्त है, मेरी भाषा में जिसको अंतरंग और बहिरंग कहते हैं, वो सारे निमित्त अनेक हो सकते हैं, परंतु अनेक हो सकते हैं। हाँ, उपादान स्वयं का है।
देखो, हमने जैन तत्व परिचय और कारण कार्य रहस्य पुस्तक जो यहाँ पढ़ाई, उसमें तो सारे ये सिद्धांतों को सिखाया।
हाँ, सब,
लेकिन उस समय लगता है, अरे उसको क्या सीखने का, उसको क्या सीखने का, अभी पता लगता है उल्टी फुल्टी बात आई तो विकेट उड़ जाती है।
ये निमित्त और उपादान के ऊपर चार चार तो लेटर्स है उसके अंदर अलग अलग।
कहीं भी कार्य तो उपादान से ही होगा, उस समय निमित्त कौन सा है उसकी बात चल रही है।
बिना कार्य के निमित्त भी नहीं कहेंगे, ये मुख्य बात है। पर लोग क्या कहते हैं, महाविधेय में जाना है, निमित्त नक्की कर दिया। यानी वहाँ क्या है, निमित्त से ही मेरा कार्य होगा और नहीं मिला इसलिए अटका है, ये मिथ्या मान्यता पड़ी है। स्वयं तो उपाय नहीं करता और बस निमित्त के लिए दोष लगाता है कि नहीं मुझे नहीं मिला इसलिए कार्य नहीं, और स्वयं अभी किस रूप परिणमित हो रहा है, कहाँ उसकी रुचि पड़ी है, हाँ वो तो देखता नहीं, और बाहर बस निमित्त नहीं आया इसलिए नहीं हुआ, ऐसा कहता है ये। हाँ, जिसको है ना दोष अपना है तो किसी पर डाल देता है। हाँ, यहाँ क्या कहते, देखो शरीर की बात चल रही थी ना, कि उसकी सत्ता जुदी है। देखो फिर पढ़ते, शरीर मां रोग आयो, नीचे का पैराग्राफ, एनो सत्ता नाम नो गुण छे, एथी एमा उत्पाद वे ध्रुव छे, माटे रोग थयो, हवे उत्पाद बीजा कोई कारणे थयो छे एम नथी, अने उत्पाद ने कोई ई जातनो दवानो उत्पाद आवे माटे पेलो रोगनो उत्पाद फरी जाय छे एम नथी। उसका अपना ही उसका रोग मिटने का समय आ गया था, वो उसके अंदर हुआ, तब वो दवा पर हम आरोप करेंगे इसके कारण हुआ, और वो रोग नहीं मिटने वाला उसकी पर्याय हो गया, क्योंकि इतनी दवाई के किसी का इलाज नहीं हुआ, हमने इतने डॉक्टरों को देखा है, फिर क्या कहते, हमने तो सब किया
पर
शास्त्र मां भाषा आवे दवा थी आम थाय, यानी निमित्त से होता है, यानी कथन जो होता है निमित्त से, ऐसे शास्त्र में भी कथन पद्धति है, जैसे कर्म के कारण हुआ ऐसे कहने की पद्धति है। पर वो कथन पद्धति में वो निमित्त का कथन करने वाली वो बात है, ये समझना चाहिए। ई बधी वातु निमित्त थी कथन छे, यानी भले शास्त्र का भी कथन हो पर जहाँ दो द्रव्यों का कथन आता है कि इसके कारण ये हुआ है, इसने ये किया, तो उसका कौन सा कथन है? वो व्यवहार का है, उपचार का है, निमित्त का है। क्योंकि जीव ने एक समय में इतने कर्म बांधे, फिर उसके सत्ता में पड़े रहे, उसने उसका संक्रमण किया, उसने उपशम किया, उसने क्षय किया, ये क्या है? सब निमित्त से कथन किया है। परंतु उसमें हमें समझना चाहिए जीव ने तो अपने परिणाम अपने में किए, कर्म की अवस्था कर्म में कर्म के कारण हुए। ये बात आने वाली है, कर्णन योग परिचय में भी एक पूरा चैप्टर इस पर लिया है, वो आएगी बात आगे। यहाँ नीचे लास्ट लाइन, अहीं तो एक गुण ते उत्पाद वेना परिणमन सहित ज होय छे, एथी तने एम लागे कि आ संयोग आयो माटे आ पर्याय थई। क्या कहते हैं? प्रत्येक गुण अपने अपने उत्पाद वे सहित, और उसके द्रव्य का तो ग्रहपना तो है ही है, तो कहते वो अपने से हुए, पर लगता क्या है? संयोग आया, कोई निमित्त आया, इसलिए कार्य हुआ। तो ते इनी सत्ता ने इना गुणना उत्पाद वे ध्रुव एना थी थया ए ते मान्यो नहीं। अब महावीर भगवान की वाणी 66 दिन तक नहीं की, आपको मालूम था कि नहीं? केवल ज्ञान हुआ कब हुआ? वैशाख दशमी, वैशाख शुद्ध दशमी, और वाणी कब छूटी? श्रावण वदी एकम। हिंदी वालों, मराठी वाला नहीं, हिंदी वाला। तो 66 दिन तक वाणी नहीं खीरी, कब खीरी? इंद्रभूति आए, वो दीक्षा ली, गणधर बने, वो तो वाणी खीरी। तो उनके कारण वाणी खीरी क्या नहीं खीरी अभी इसमें? तो किसकी सत्ता में हुआ कार्य? वो महावीर भगवान की के इंद्र की? अरे उनको जरा विचार करने दो। तो भाषा वर्गना शब्द रूप परिणमित हुई, वो पुद्गल की सत्ता में कार्य हुआ है। और हमने क्या, हम सारे निमित्त ऐसे ढूंढे, वो गणधर नहीं था, और फिर गणधर नहीं था तो किसको पता चला? इंद्र को पता चला, अवधि ज्ञान लगाया, पहले क्यों नहीं लगाया?
यानी हमने ऐसा माना,
हाँ,
कि वो जो वाणी खीरी वो भाषा वर्गना पुद्गल द्रव्य है,
हाँ,
उस पुद्गल द्रव्य को ज्ञान हुआ कि अरे गणधर है, चलो अपने को अभी काम करना है, ऐसा हुआ कि नहीं?
अरे छह द्रव्य में परिणमन हो रहा है, वो भले चेतन हो या जड़ हो, वो अपने से अपने में हो रहा है, और निमित्त भी जो कोई वहाँ जड़ या चेतन जो कुछ है वो यथायोग्य होता है। ना किसी को आवश्यकता है कि ये समझने की कि हाँ कोई आया है अभी मुझे खिलना है। वो जड़ का कार्य जड़ में अपने से होता है, चेतन का कार्य चेतन में अपने से होता है। हम आरोप करके कहें नहीं नहीं इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया फिर गए उसको लाए, वो सब कथन ऐसा ही होगा।
तो फिर ऐसा भी शास्त्र में कथन आता है, जब तक गंधर नहीं आते तो वाणी नहीं
खिलती। ऐसा कथन आता है के कारण से निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ऐसे कथन आते हैं, यह निमित्त का ज्ञान है। हाँ हाँ, वो ज्ञान का विषय है, निमित्त है वो, पर उससे उसके कारण नहीं हुआ है। वो स्व समय उस समय की योग्यता जो है भाषा रूप होने की, और उसमें भी केवल ज्ञान भी निमित्त है ना, नहीं तो भाषा रूप होने की बाकी भाषा वर्गना अन्य जीवों की भाषा तो चल ही रही थी वहाँ पर, उसको तो दिव्य ध्वनि कोई नहीं कहेंगे। और केवली का वचन योग वो भी निमित्त है वहाँ पर, बहुत सारे निमित्त होते हैं। भवि भाग है ना, वचन योग किसका है? केवली का वचन योग है, और भव्य जीवों का भाग्य है ना, उनके भी दिव्य ध्वनि सुनने का वहाँ योग उनकी है, उसका पुण्य का उदय है वहाँ पर। वैसा यानी अनेक निमित्त होते हैं, निमित्तों के कथन भी होते हैं, परंतु मूल बात हमको पकड़नी है कि प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अपने में है, उसका उत्पाद व्यय ध्रुवत्व उसके अपने में हो रहा है। तूने वो नहीं माना, ये सेकंड लाइन में 88 पेज पर, उत्पाद वे ध्रुव एनाथी थया ए ते मान्यू नहीं, तूने उसके नहीं माना। समझाए छे काय? અહીંયા ત્રણ લીટીમાં એટલું અંદર ભર્યું છે, લીટી અને પંક્તિ ઓળ, આમાં તમે વાંચ્યું શું હશે ત્યાં ભાઈ? એને કોઈ કહે ને હમણે તો પડ લ્યા, હું શું તે આપના વિના અર્થ સમજાય એવું નથી, ફિર વિનિમિત્ત સે બતા રહે. જગદીશજી વ્યાસ કાઢવામાં કેમ વિશ્વાસ થાય છે? આ હા હા, એને હિસાબ કિતાબ ને કહી સા બરાબર ચાલતા હે દિમાગ. અહીં તો ગજબ વાત કરી છે ને, સત સત્તા ઉત્પાદ વે ધ્રુવયુક્તમ પરિણમન, તે તે દ્રવ્યનું, તે તે ગુણનું, તે તે ગુણના ઉત્પાદ વે ને ધ્રુવ, પ્રત્યેક ગુણ મેં હોગા ઐસા, વો જડ હો યા ચેતન હો, પ્રત્યેક દ્રવ્ય કે પ્રત્યેક ગુણ મેં અપના અપના ઉત્પાદ વે ધ્રુવ ચલ રહા, એ ગુણના જ ઉત્પાદ વે ધ્રુવ છે, અને એ ગુણ ગુણીનો ગુણ છે. ક્યા કહા? પ્રત્યેક ગુણ કા ઉત્પાદ વે ધ્રુવ હૈ, ઓર ગુણી ઓર ગુણ મેં તો વો તો એકત્વ હૈ, ગુણી કા હી ગુણ હૈ, ઇસલિયે દ્રવ્ય કે હી ઉત્પાદ વે ધ્રુવ હૈ, યે ઉન્હોને પહેલે સિદ્ધ કિયા થા. યહી બાત ફિર દોબારા બતા રહે કે એ ગુણ ગુણીનો છે, ગુણીનો ગુણ છે, માટે ગુણી પોતે જ, ગુણી પોતે જ અને દ્રવ્ય સ્વયં હી તે રીતે ઉત્પાદ વે ધ્રુવપણે પરિણમ્યો છે. સંયોગને ન જો, એને વો નિમિત્ત કે દેખને કી જરૂરત નહીં, વો રહેગા, ઉસકી ઉપસ્થિતિ હૈ વહાં પર, વો અપને મેં ઉસકા ઉત્પાદ વે ધ્રુવ ચલ રહા હૈ, ઓર તેરા તેરે મેં ચલ રહા હૈ, તો કહેતે સંયોગ કો મત દેખ. અહીં તો માણસને એમ થાય કે એને લોગોં કો એસા લગતા હૈ આ સંયોગો આવ્યા અને એકદમ પલટન થયું, માટે સંયોગથી થયું એમ નથી. લગતા હૈ કે કિસી કે સંયોગ હુઆ, પહેલે તો નહીં કાર્ય હો રહા થા, અબ હુઆ, ઉસ સંયોગ કે કારણ હુઆ, ઉસ ડોક્ટર કે કારણ યે દવાઈ, યે બીમારી ઠીક હોઈ, એસે એસે હરેક મેં હમ નિમિત્ત કો ઢૂંઢતે હૈ, ઉસકી કથન ભી કરતે હૈ. કહેતે એસા નહીં હૈ, અત્યારે અહીંયા સાંભળવામાં આવે છે અને અંદર જ્ઞાન થાય છે, એ સાંભળવાનો સંયોગ આવ્યો માટે ત્યાં જ્ઞાન થયું, એ અહીં ના પાડે છે. ઉપર વિચાર છે ને, આપના વિના અર્થ સમજાયું નથી, ઉસકો યહાં ક્યાં કહેતે. દેખો અત્યારે અહીંયા સાંભળવામાં આવે છે અને અભી યહાં પર સુનને મેં આ રહા હૈ, અંદર જ્ઞાન થાય છે ઓર સુનને વાલોં કે અંદર જો જ્ઞાન મેં સમજને રૂપ કાર્ય હુઆ, તો કહેતે એ સાંભળવાનો સંયોગ આવ્યો માટે ત્યાં જ્ઞાન થયું, એ અહીં ના પાડે છે. એ સુનને કા સંયોગ થા, વો સુનને કે કારણ ગુરુદેવને પ્રવચન ક્યા, ઇતના ઉન્હોને સમજાયા, ઇસ સંયોગ સે યહાં સમજને કા કાર્ય હુઆ, કહેતે એ નહીં હો, એસા નહીં. એ જ્ઞાનમાં સત્તા એટલે અસ્તિત્વ નામનો ગુણ છે, અને જ્ઞાન પણ છે ને, એને જ્ઞાન હૈ કહેતે ને, તો ઉસમે ભી અસ્તિત્વ હૈ, જ્ઞાન કા અપના અસ્તિત્વ હૈ, એ છે. એનું ઉત્પાદ વે ધ્રુવપણે ધ્રુવરૂપે જ્ઞાનનું પરિણમન થાય છે. જ્ઞાન કા ભી નયા જાનને રૂપ કાર્ય હુઆ, પુરાના જો વ્યય હુઆ, પુરાની પર્યાય, ઓર જ્ઞાન જાનના 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 કાયમ ધ્રુવ ધ્રુવરૂપ સે ચલ રહા હૈ, એ તીનો પરિણામ કો લેના. તો કહેતે એ જ્ઞાન કા પરિણમન હો રહા હૈ, એને લઈને એના જ્ઞાનના પર્યાયનો ઉત્પાદ છે. અમારી જો જાનની રૂપ હર સમય જો કાર્ય હો રહા હૈ, વો અપને સે હો રહા હૈ, ઉત્પાદ વે ધ્રુવ અપને સે હો રહા હૈ, જ્ઞાન ગુણ કહો અપના દ્રવ્ય કહો, એકી વાત. સાંભળવામાં સાંભળવાના શબ્દને લઈને એને સુનને મેં આને વાલે શબ્દો કે કારણ ત્યાં જ્ઞાનના ઉત્પાદનો પર્યાય છે એમ નથી. એને વો સુનને કે કારણ જ્ઞાન હુઆ, ગુરુદેવ કી વાણી સુની, અરે તીર્થંકર કી વાણી સુની, ઇસલિયે યહાં જ્ઞાન હુઆ, તો કહેતે એસા નહીં, વો જ્ઞાન કી અપની યોગ્યતા સે ઉસકા ઉત્પાદ હુઆ હૈ. આપ કહેંગે એસા તો સ્વચ્છંદ હો ગયા, એસા નહીં હોતા, ક્યોંકિ એસે જિસકો ખ્યાલ મેં આ જાતા હૈ જ્ઞાન હોતા હૈ, ઉસકે તો જો નિમિત્ત કે તરફ અતિ ઉસકે વિનય ભાવ હો જાતા હૈ, ભલે શાસ્ત્ર હો, ગુરુ હો, યા જો તીર્થંકર હો, જ્ઞાની હો, ઉનકે પ્રતિ વિનય રહેગા હી રહેગા. વો તો એસા નહીં, તુમને ક્યાં ક્યાં મેને મેરે સે જાના, એસા વો તો સ્વચ્છંદ હોતા હૈ, એસા ઉસકો નહીં રહેગા, યે કહે રહે. પ્રશ્નકાર પૂછતે હૈ આ તો ઉપાદાનની વાત થઈ વ્યવહાર થી શું હવે ઇસકી મહત્તા તો વ્યવહાર કી આ રહી હૈ એ તો ઉપાદાન કી વાત હૈ સમાધાન ઉપાદાન નહીં એની વસ્તુની સ્થિતિ જે છે ઉચિત નિમિત્ત ભલે હો એ તો ઉપાદાન કો ઉડા દેતા હૈ નિમિત્ત કી ચર્ચા કરતા હૈ યહાં તો કહે રહે કે ઉચિત નિમિત્ત ભલે હો ઉસકા ના નહીં હૈ વો નિમિત્ત હૈ વહાં પર પણ હરેક કી સત્તા હરેક કા ઉત્પાદ વ્યય અપને મેં ચલ રહા હૈ પણ તે કાળે પોતે જ પોતાને કારણે ક્યાં કહા સ્વયં હિ ઉસ સમય પોતે જ અને સ્વયં હિ પોતાને કારણે અપને કારણ ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવપણે સત્તા પરિણમે છે અને સત્તાગુણ ગુણીનો છે માટે સત્તાનું પરિણમન છે તે ગુણીનું જ પરિણમન છે સંયોગનું નહીં દેખો એ દો તીન વાક્યો મેં પૂરા સિદ્ધાંત ભર ગયા પહેલે મેં પહેલે ક્યાં નક્કી ક્યાં કે ઉસ સમય સ્વયં હિ સ્વયં અપને હિ કારણ ઉત્પાદ વ્યય ધ્રવ્યપણે વો સત્તા પરિણમિત હુઈ હૈ ઓર સત્તા ગુણ હૈ વો દ્રવ્ય કા હિ હૈ ગુણી કા હૈ ને દ્રવ્ય કા હિ હૈ ક્યોંકિ દોનો અભિન્ન હૈ તો કહેતે કે સત્તા કા જો પરિણમન હૈ વો દ્રવ્ય કા હિ પરિણમન હૈ સંયોગ કા નહીં આવી વાત છે બેસવી કઠન પડે મુમુક્ષુ તે બેસે તો સમાધાન થાય એને સમજમાં આવે બેસે ને સમજમાં આ જાવે એક્સેપ્ટ હો જાવે તો સમાધાન હો જાતા હૈ ગુરુદેવશ્રી કહેતે વસ્તુ સ્થિતિ આ છે યહી રિયાલિટી હૈ યહી વસ્તુ કા સ્વરૂપ હૈ એ કહે રહે અહીંયા બતાવવાનો હા અહીંયા એને યહાં પર બતાવવાનો હેતુ તો આ છે કે યહાં પર એ બતાને કા હેતુ ક્યાં હૈ કારણ ક્યાં હૈ કોઈ પણ તત્વની એકદમ બદલતી અવસ્થા દેખીને સંયોગ આવ્યો માટે બદલતી અવસ્થા થઈ એમ નથી એસા અચાનક હોય એસા લગતા હૈ ના વો શાસ્ત્ર કે કિતને દ્વારકા જલી અરે ક્યું જલી ઇતને સોને કી દ્વારકા થી ઓર ઇતના સબ ગજબ કા થા સબ ઓર એસી દ્વારકા જલી કિસને જલાઈ અરે દીપાયન મુનિ ને જલાઈ પરંતુ ઉસ દ્વારકા વાજ જો ઇસ કન્સ્ટ્રક્શન થા ઉસકો એસા હી જલને કા સ્વયં કી યોગ્યતા સે વહાં જલી તો કહે નિમિત્ત પર આરોપ કરેંગે હમ ઇનકે કારણ જલી કારણ નિમિત્ત ભી હોતે હૈ વહાં પર ઓર વહી નિમિત્ત હોગા વો ભી નિશ્ચિત થા તો નિશ્ચિત થા તો નિમિત્ત કા ભી કથન ભગવાન કી વાણી મેં આયા થા ઇનકે કારણ એસા એસા હોગા પણ કારણ એને કોણ સા વો નિમિત્ત કારણ યહાં ક્યા હૈ એમ લગતા તત્વની એકદમ બદલતી અવસ્થા દેખી એને હમે છે ને અરે અભી અભી તો અચ્છા થા ક્યાં હુઆ અચાનક એસા હુઆ અચાનક હુઆ ક્યાં હુઆ તો નિમિત્ત કી તરફ પહેલે મેં પહેલે રખે જાતા યહાં લખતા એકદમ બદલતી અવસ્થા દેખીને સંયોગ આવ્યો માટે બદલતી અવસ્થા થઈ એમ નથી પહેલાં આમ હતું અને પછી કેમ આમ થયું પહેલાં આ જ્ઞાનની પર્યાય નહોતી અને અહીંયા બેઠા પછી જ્ઞાનની પર્યાય આવી થઈ સાંભળવામાંથી આવી થઈ તેનું કારણ શું અભી સુનતે સુનતે વો જ્ઞાન હુઆ ઉસકા કારણ ક્યાં એ કહે રહે આહા કહે છે કે એનો જ્ઞાન ગુણ અને સત્તાના પરિણમનનો ગુણ જ ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવ રૂપે છે એથી તેના ગુણનો ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવ કરીને એ પરિણમન થયું છે અને ગુણ ગુણીનો એટલે દ્રવ્યનો છે એટલે એ દ્રવ્યનું જ પરિણમન છે બીજાનું છે નહીં હવે યહાં દ્રવ્ય કા પરિણમન હૈ યહાં નક્કી કરના હૈ વો પર્યાય પર્યાય સે હોતી વો બાત યહાં કા વિષય નહીં હૈ દ્રવ્ય હિ ઉસ પર્યાય રૂપ સે પરિણમિત હુઆ હૈ યે યહાં કા દો હિ દૂસરા દ્રવ્ય નિમિત્ત નામ કા કોઈ ઉચિત નિમિત્ત જિસકો કહેંગે ઉસને ઇસકા પરિણમન કરાયા યે બાત નહીં પ્રત્યેક દ્રવ્ય કા અપને મેં અપને સે હિ ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવ રૂપ સે પરિણમન ચલતા હૈ વો ઉસકે પરિણામ હૈ દ્રવ્ય હૈ ને વો ઉસકે તીન પરિણામ હૈ ઉસકે દ્રવ્ય હર સમય કે અપને અપને ઉસ સમય કી સુનિશ્ચિત હૈ એ કહે રહે હવે આમાં પરની દયા ને પરની હિંસા ને મંદિર બનાવવા ને રથયાત્રા કાઢવી એ તો ક્યાંય રહી ગયું એને કોઈ દૂસરે કે ના દયા કર સકતા હૈ ના હિંસા કર સકતા હૈ ના મંદિર બાંધ સકતા હૈ એ તો ઉસકી જો અપની અપની યોગ્યતા સે કાર્ય હોતે હૈ ઉચિત નિમિત્ત ભલે હો પણ નિમિત્ત તો અપને મેં અપની ઉસકા ઉત્પાદ વૈધ્રુવ ચલ રહા હૈ और जहाँ जिसका कार्य हो रहा है उसका उत्पाद है उसके अपने में अपने से हो रहा है। हमने नक्की तो किया ना, हमने तो पैसा तो इकट्ठा किया ना, हमने तो शुभ भाव तो किया ना, इसलिए किसी ना किसी रूप में हम निमित्त तो थे ना, यानी क्रेडिट लेना चाहते हैं। आप ऐसा कहते हैं, हम ऐसा कहते हैं कि भगवान हमें अच्छे में निमित्त बनाए तो अच्छा है। एक तो भगवान आपको निमित्त बनाने वाले नहीं है। अरे भगवान कुछ नहीं करते, कैसे भगवान बुद्धि दे, भगवान हमको ऐसी मति दे, ये कुछ सब झूठी बात है। और बाकी हम दुनिया के लिए हम निमित्त तो हो जाए, हम सबको पढ़ाएंगे तो हम निमित्त तो हो जाए, तो ऐसे बात तो तू पढ़ाने के लायक भी नहीं है, पात्रता नहीं। ये जो मूल में भूल तेरे में चल रही है तो तू क्या जाके दूसरों को पढ़ाएगा, ये कह रहे हैं। ख्याल में आते ना बात, पकड़ लिया। हम कुछ बोलने वाले थे,
याद आए। तो आपने इतने सारे हजारों पुस्तकें छाप कर सबको फ्री में बांट रहे, तो वो बात कहाँ गई?
अरे कौन बांटे, बोले क्या? वो परमाणु का कार्य उसमें अपने में हो रहा है, और लोग पढ़ेंगे उनका ज्ञान में जो कुछ हो गया उसका अपने के कारण। ये तो कितना सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई सोच समझ कर तो ये कोई बातें करते नहीं है ना।
आपने किसका भी लिखी है?
नहीं ना। आचार्य नहीं लिखते तो हम कहाँ के लिखने वाले, कौन है?
ऐसा कहने में आता है, वो तो कागज का यानी पेन का वैसा परिणमन होना था, वो हुआ उस समय, इनके भाव वैसे कराने के थे।
तो केवल शुभ राग था कि समझाने का, बस इतना है।
वो बंद का ही कारण है।
अपनी मर्यादा कहाँ है? अपने पर्याय तक। परद्रव्य के पर्याय में हमारी मर्यादा नहीं चलती। वहाँ जो लिखने का कार्य हुआ वो तो हाथ का कार्य हुआ, पेन का कार्य हुआ, कागज का जो कुछ है वो तो उसमें अपनी कुछ चलती नहीं ना।
परद्रव्य को तो जड़ ही मानते हैं ना, इसीलिए तो इधर सब प्रॉब्लम है। वो कुछ करता है ये मानने
में नहीं। जड़ में जड़ का कार्य उसके अपने से होता है, ये बात लगती ही नहीं है अंदर।
मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आत्मा करता है क्या? कैसा
है
क्या नहीं? आत्मा करता है क्या अकर्ता है? अभी और आसान से
करता है,
करता है। किस बात का?
ज्ञान
स्वयं के परिणमन का करता है,
पर का करता नहीं
है। समय सारणी भी बात है कि आत्मा अकर्ता है, वो किस अपेक्षा से पर का करता नहीं है।
यानी राग का भी अकर्ता कहा, अपन ज्ञान का भी अकर्ता कहो तो बात ऐसे लोग मानने वाले भी हमको मिलते हैं, कहीं जाते हैं ना पूछते प्रश्न तो सर्वथा कर्ता मान लेते हैं, तो ज्ञान का कर्ता कौन है? अभी है ना उत्पाद वेद हुआ, अपने में अपने से अपने हो रहा है, उसका कर्ता वो स्वयं है, कहेंगे भी उसको। परद्रव्य का कर्ता नहीं है, और यहाँ राग से भेद ज्ञान करना है तो राग का भी कर्ता नहीं है। प्रवचन सार में तो राग का भी तो कर्ता है ऐसा कहेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ तो ज्ञान कराने परिणमन किसमें हो रहा है पहले वो नक्की करना है, भाई उससे भेद ज्ञान करने की बात बाद में, वो भी बताएंगे। यहाँ पेज नंबर 89 पर हम नीचे गुरुदेव का प्रवचन पढ़ रहे थे, बाहरे वहां ताकड़ी बापू लास्ट पैराग्राफ। कोई पण द्रव्य तेते काले संयोगो भले विविध प्रकार ना आवे, तेथी अहीं यहाँ पर विविध प्रकार नी पर्याय थई एम नथी। जुदे जुदे संयोग से जुदे जुदे पर्याय हो रहे, पर वो संयोग के कारण हो रही है ऐसा नहीं है। ते क्षणेज तेना उत्पादनो व्ययनो ध्रुवनो एटले सत्तानो परिणमन गुण छे माटे थाय छे। ते गुण गुणीनो छे, गुणीनो ने द्रव्य का है, तो गुणी ए रूपे परिणम्यो छे। ऐसे सत्ता गुण का वो परिणमन है, परंतु सत्ता और द्रव्य अभिन्न है, वो गुण गुणी का ही है, इसलिए वो गुणी यानी द्रव्य ही उस रूप परिणमित हुआ है। संयोगो ए रूपे परिणम्या छे, अने संयोगों ने लईने गुण परिणम्या छे एम नथी। आ तो बेसे एवं है, यह तो बात समझ में आवे ऐसी बात है। आ रीते सत्ता ने द्रव्यनु गुण गुणीपणु सिद्ध थाय छे। ये यहाँ का विषय था 109 नंबर के गाथा। हवे गुण ने गुणीना अनेकपणानु खंडन करे छे। पहले वो एक है बताया, अब वो अनेकपणा उसमें अनेकता है इसका खंडन कर रहे हैं। अभेद सिद्ध करी अने तद्दन गुण ने गुणी एक ज छे एम नथी। गुण ने गुणीना अनेकपणानु खंडन करे छे। आहा हा, अभी 110 नंबर की गाथा, पेज नंबर 89, पीछे के पेज पर चलना। अथ यानी अब यहाँ पर गुण गुणी नो हो, गुण और गुणी इन दोनों का नानात्वम, नानात्व यानी अनेकपना, उपहंती, उपहंती का तो खंडन करते उसका, रूल आउट करते कि हवे गुण ने गुणी ना अनेकपना नु खंडन करे छे। पहले क्या बताया, वो एक है, अभी अनेक नहीं है, दोनों ओर से बताए।
अर्थ तो एक ही होता है,
एक ही है। हाँ, गाथा पढ़ेंगे। नथी गुणोत्तिव कोई पच्चाओत्ती हवा विना दौवम दौवत्तम पुन भावो तम्हा दौवम स्वयं सत्ता नास्ति गुण इति वा कश्चित् पर्याय इति हवा विना द्रव्यम द्रव्यत्वं पुनर्भावः तस्माद् द्रव्यं स्वयं सत्ता पर्याय के गुण एव कोई न द्रव्य विन विश्वे दिशे द्रव्यत्व के वै भावते थी द्रव्य पोते सत्व छे। ये गुजराती जो हरिगीत बनाए ना बहुत अच्छे बनाए, पूरा उसमें क्लियर भाव पूरा पकड़ में आ जाता है उसके अंदर। देखो इसका अन्वयार्थ देखते हैं पेज नंबर 90 पर, 90 मिला बीच में लाइन के बीच में। इह यानी आ विश्वमा यानी श्लोक में गुण इति वा कश्चित गुण एवं कोई पर्याय इतिवा के पर्याय एवं कोई द्रव्यम विना न अस्ति द्रव्यम विना ने द्रव्य थी जुदू होती नहीं। क्या कहते इस विश्व में गुण कहो या पर्याय कहो बिना द्रव्य के वो पाया ही नहीं जाता। कि गुण हम द्रव्य का गुण कहेंगे, द्रव्य की पर्याय कहेंगे, तो गुण और पर्याय है पर द्रव्य नहीं, तो कहते ऐसा हो ही नहीं। बिना द्रव्य के ना गुण है ना पर्याय। द्रव्यत्वम पुनः भावा अने द्रव्यत्व ते भाव छे अर्थात अस्तित्व ते गुण छे। द्रव्यत्व कहा ना, द्रव्य नहीं कहा, द्रव्यत्व द्रव्यपना वो भाव हुआ। तस्मात तेथी द्रव्यम स्वयं सत्ता द्रव्य पोते सत्ता अर्थात अस्तित्व छे। यहाँ द्रव्यत्व ते भाव छे ने अस्तित्व ते गुण छे ऐसा मत लिया, इसलिए द्रव्य स्वयं ही अस्तित्व है, द्रव्य स्वयं ही सत्ता है। अब ये तो हुआ अन्वयार्थ। अब टीका पढ़ते हैं अमृतचंद्राचार्य की। यहीं से खरेखर द्रव्य थी पृथकभूत, पृथकभूत यानी भिन्न जुदा, द्रव्य थी पृथकभूत यानी जुदू गुण एवं कोई के पर्याय एवं कोई पण न होय। यानी द्रव्य से जुदा ऐसे कोई नहीं गुण पाया जाता है ना कोई पर्याय होती है। जेम अभी दृष्टांत सुवर्ण थी पृथकभूत तेनी पीलाश आदि के तेनु कुंडलपणु आदि होता नहीं। यानी सोने की पीलाश तो है पर सोना नहीं है, अकेले पीलाश नहीं होता है, सोने की पीलाश सोने के बिना नहीं होगी, और सोने के जो कुंडल वगैरह बनाए हैं वो बिना सोने के तो नहीं होंगे। तेम 91 पेज हवे ते द्रव्यना स्वरूपनी वृत्तिभूत, द्रव्य के स्वरूप की वृत्ति, वृत्ति का अर्थ क्या है याती कायम है तो द्रव्यना स्वरूपनी वृत्तिभूत अस्तित्व नाम थी कहवातु जे द्रव्यत्व। द्रव्य का द्रव्यपना किस नाम से बताया जाता है तो अस्तित्व। फिर से देखते हैं, देखो द्रव्यना स्वरूपनी वृत्तिभूत अस्तित्व नाम थी कहवातु जे द्रव्यत्व यानी द्रव्य किस रूप से कायम टिका हुआ है, तो द्रव्यत्व द्रव्य पने से कायम टिका हुआ, उसी को यहाँ अस्तित्व कहा। ते तेनो भाव नाम थी कहवा तो गुणच हुआ थी, उसी को उसका भाव कह दिया, वो उसका गुण हुआ। शुं ते द्रव्यपना थी पृथकपने वर्ते छे, यानी उसको जो भाव कह दिया वो भी गुण ही है, तो क्या वो द्रव्यपना से जुदा है? कहते नहीं है। नथीज वर्त तू नहीं ही होता तो पछी द्रव्य स्वयं एटले पोते ज सत्ता हो, यानी द्रव्य स्वयं ही सत्ता निश्चित हो जाती है उसके। ये घटित करके बताया कि वो दूसरे जुदे नहीं है, द्रव्य स्वतम स्वयं ही सत्ता है। अब यहीं रुकना पड़ेगा। अभी जयसेन आचार्य की टीका 89 पर कितनी बड़ी है, नहीं होगी ना, कल पढ़ेंगे इसको, अभी तो 2 मिनट है मगर होगी नहीं। 89 पेज पर जयसेन आचार्य की टीका से हम कल प्रारंभ करेंगे। चावानी के ज्ञान ते सुये लो कालो सोवानी मस्तकनम सदा देत हो।
നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആയര്യാണം നമോ വജ്രായണം നമോ ലോഹ സപ്സാണം നമോ അരിയന്താണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആയര്യാണം നമോ വജ്രായണം നമോ ലോഹ സപ്സാണം നമോ അരിയന്താണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ